नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद से कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। वार्ता से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। औपचारिक स्वागत के बाद बिन सलमान ने संवाददाताओं से कहा, मैं भारत आकर बहुत खुश हूं। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। सऊदी नेता ने कहा कि शिखर सम्मेलन में कई घोषणाएं होने से दुनिया को फायदा होगा। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से ही इसरो ने अपने नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। इसरो जल्द ही अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसरो खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा देश होगा जो स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत का स्पेस स्टेशन अमेरिका और चीन के स्पेस स्टेशन के मुकाबले बहुत खास होगा। स्पेस स्टेशन एक उपकरण होता है जिसको अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी लगातार करता है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री स्पेस स्टेशन पर रह रहकर तरह तरह के रिसर्च करते हैं। स्पेस स्टेशन धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में आमतौर पर 6 माह के लिए रहते हैं। स्पेस स्टेशन पर एक समय में 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। उनके वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के दूसरे दल को भेजा जाता है। बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को 15 देशों के साथ मिलकर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गरमाई हुई है। नायडू को विजयवाड़ा के एक कोर्ट ने करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रविवार देर रात राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल भेज दिया गया। इधर TDP ने आज बंद बुलाया है जिसके चलते नायडू के समर्थक राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। TDP को जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का साथ भी मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नायडू को विजयवाड़ा से पूर्वी गोदावरी जिले के राजा महेंद्रवरम तक लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा के बाद जेल पहुंचे। पूर्वी गोदावरी जिले के पुलिस अधीक्षक पी जगदीश ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू देर रात करीब 1:20 पर जेल पहुंचे। पुलिस के अनुसार चंद्रबाबू नायडू को कैदी संख्या 7651 के साथ अगली प्रक्रिया तक जेल के स्नेहा विंग में एक ऊपरी ब्लॉक दिया गया है। जुडिशियली कस्टडी के दौरान नायडू को कोर्ट द्वारा दी गई सुविधाओं में घर का बना खाना, दवाएं, एक विशेष कमरा शामिल है। 73 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को उनके जीवन को कथित संभावित खतरे के मद्देनजर जेल के अंदर रहने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया गया। उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली में होने वाले विपक्षी दल इंडिया की समन्वय समिति की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि ED उन्हें 13 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है, लेकिन ED के इस समन पर सियासी घमासान मच गया, क्योंकि जिस दिन TMC महासचिव को ED के सामने पेश होना है उसी दिन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में होगी। अभिषेक बनर्जी विपक्ष गुट इंडिया गठबंधन के समन्वय पैनल के मेंबर हैं। दिल्ली में आयोजित G20 बैठक के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया। अब तक 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं। इनमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। चीन और तेल उत्पादक सऊदी अरब और रूस ने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूल ब्लेडिंग के मामले में सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। PM ने भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में 20% एक एथेनॉल मिलाया जाए। दिल्ली में रविवार को G20 समिट का समापन हुआ। इस दौरान तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को G20 सदस्यों की नई दिल्ली घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि ये निसंदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत थी। थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों को आम सहमति पर लाने के लिए भारत की सराहना की। न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू में थरूर ने कहा, दिल्ली घोषणा निसंदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। ये एक अच्छी उपलब्धि है। जब तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया था तब तक पूरी उम्मीद थी कि कोई समझौता नहीं होगा और इसीलिए एक संयुक्त घोषणा संभव नहीं हो सकती है। बयान पर सर्वसम्मति की कमी का मुख्य कारण उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में रूसी युद्ध की निंदा करना चाहते थे और उस विषय का कोई उल्लेख नहीं करना चाहते थे। थरूर ने कहा कि भारत उस अंतर को पाटने का फॉर्मूला ढूंढने में सक्षम रहा और ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि जब बिना संयुक्त विज्ञप्ति के कोई शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा अध्यक्ष की कमी के रूप में देखा जाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।